साथियों नमस्कार, आप सुन रहे छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से मैं दिनकर पातुकर। आज हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच पर बदलते मौसम विषय पर बातचीत करने के लिए विशेष आमंत्रित है पर्यावरण मित्र पवन श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर जी।
नमस्कार
सर जी, आज हम आपसे जानना चाह रहे कि जो पर्यावरण है अचानक बदलने से इसका असर ग्रामीणों पर क्या पड़ता है।
तो देखिए, हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं उसमें जितने भी ऋतुएं परिवर्तित होती हैं या जिस प्रकार का मौसम विशेषताएं रहती हैं उस पर आधारित जीवन शैली रहती है, चाहे वो कृषि हो या हमारे दैनिक दिनचर्या हो, व्यवसाय हो और किसी भी प्रकार का जो हमारा जीवन चक्र में होने वाली गतिविधियां हैं, सभी मौसम पे बहुत ज्यादा चीजें निर्भर होती हैं। बदलता जो मौसम, पर्यावरण जो धीरे 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 परिवर्तित हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे अब परिस्थितियां बदलती जा रही, तो उसमें बहुत सारी चीजों में डिस्टर्बेंस भी हो रहा है और बहुत सारी जीवन शैली में लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं, कृषि उपज में भी फर्क पड़ रहा है, दैनिक जीवनचर्या में भी फर्क पड़ रहा है और शारीरिक तकलीफें भी बढ़ रही है लोग।
सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस पर्यावरण में बदलते मौसम के लिए विशेषकर कारक क्या है।
बदलते मौसम के लिए कारक तो देखिए, बहुत तीव्र गति से जो धरती के ऊपर लोड हो रहा है, जो भार बढ़ रहा है धरती के ऊपर और हम सभी धरतीवासी अनियंत्रित तरीके से हम उसका दोहन किए जा रहे हैं बिना किसी प्लान के, बिना किसी सोच के, बिना किसी संकोच के, और उसके वजह से ये पड़ रहा है, जिसमें बहुत तीव्र गति से हमारा शहरीकरण हो रहा है, तीव्र गति से जंगलों की कटाई हो रही है, तीव्र गति से कारखानों का निर्माण हो रहा है, धरती की जलवायु जो है जिस तरीके से जितना टेम्परेचर उसे सहना चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर अब हमारी दैनिक उपयोग में की जाने वाली गतिविधियां उसके वजह से बढ़ रहा है, चाहे वो आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, फैक्ट्री कारखाने से रिलेटेड हो या फिर हम और भी जितनी गतिविधियां कर रहे हैं उनके कारण हो रहा है।
सर जी, आपने कारक के अंतर्गत एक बात ये भी कही है कि भाई वन कटाई अधिक मात्रा में देखने में आया कि पिछले दो वर्ष में जब देश में कोरोना की स्थिति थी उस समय लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा था, तो अभी भी वर्तमान में ऐसी चर्चा आ रही है कि विश्व के अन्य कई देशों में कोरोना ने दस्तक दे दी है, तो क्या इस समय हम इस बदलते मौसम को कोरोना से कैसे समझ पाए।
देखिए, कोरोना से संबंधित जो परिस्थितियां निर्मित हुई थी उसके बहुत सारे कारक रहे हैं और ऑक्सीजन को लेके जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ऑक्सीजन की कमी लोगों में आई थी, लेकिन वो कोरोना के वजह से होने वाली जो समस्या है उसमें सबसे ज्यादा आवश्यक शारीरिक तकलीफ के कारण कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया है पूरे विश्व में और खासतौर पर हमारे देश में भी और हमारे क्षेत्र में भी जिस जगह में हम लोग रहते हैं कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छे होने की वजह से और यहाँ की जलवायु और यहाँ का रहन सहन और लोगों में शारीरिक क्षमता अच्छी होने की वजह से यहाँ पे कोरोना का असर भी कम पड़ा था।
ये बात तो सही है सर कि जो गांव जंगलों के किनारे बसे थे या जंगलों के अंदर बसे हुए थे वहां पर कोरोना ने दस्तक नहीं दी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अधिक मात्रा में वन कटाई हो रही है
जी,
जिसके कारण मौसम भी परिवर्तित हो रहा है
जी,
और यदि ऐसे समय में भारत में यदि कोरोना दस्तक दे
जी,
तो क्या भविष्य में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।
तो देखिए, कोरोना के कारण जो सिम्टम्स होते हैं लंग्स को लेके, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो तो अगर हमारे पास में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में बनेगी तो होगी और नहीं होगी तो दिक्कत होगी, लेकिन चूंकि हम दैनिक नियमित दिनचर्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो वनों की कटाई से जो आमतौर पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी कम होती जा रही है। कोरोना के समय से तो जो समस्या आती है वो तो ठीक है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी जो अंधाधुंध वनों की कटाई होने लगी है और जिसकी वजह से शहरीकरण हुआ है और जंगल खत्म हुए हैं, उसके कारण से सामान्य तौर पे भी लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। आप प्रदूषण के वजह से जंगल होने के वजह से प्रदूषण कम होता था, लेकिन जंगल कम होने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बहुत मात्रा में बढ़ रहा है। सबसे बड़ा एक घातक कारण हमारे शारीरिक उस पे बहुत असर करता है, ऑक्सीजन का कम होना जलवायु में, वायु उसके लिए तो निश्चित तौर पे दिक्कतें आएगी।
सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी वर्ष का अंतिम माह दिसंबर माह चल रहा है
जी,
और शीघ्र ही हम नए नव वर्ष में प्रवेश करने जाएंगे
जी,
और चूंकि आप तामिया क्षेत्र से हो
जी,
उधर पातालकोट और अन्य दर्शनीय स्थल है और सैलानियों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो छिंदवाड़ा जिले में ऐसे कौन कौन से विशेष स्थल है
जी,
जो देखने लायक है और जिन्हें आप सैलानियों को विशेष आमंत्रित करते हो, आकर्षित करते हो
जी? देखिए, छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है और प्राकृतिक रूप से ये जिला बड़ा ही संपन्न है। यहाँ की जैव विविधता इतनी है यहाँ पे कि आप छिंदवाड़ा जिले के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको अनुभूति बहुत अच्छी होती है। प्राकृतिक दर्शनीय स्थल तो निश्चित तौर पे सतपुड़ा के क्षेत्र से लगा में ये जो पहाड़ियां स्थल है, पातालकोट है, तामिया है, छिंदवाड़ा में आपका देवगढ़ है, आप माछागोरा डैम है और भी बहुत सारे, जमतरा है, बहुत सारे दर्शनीय स्थल यहाँ पे है। लेकिन अगर इन दिनों की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो प्राकृतिक दर्शन के लिए तामिया और पातालकोट क्षेत्र में आते हैं। पातालकोट तामिया क्षेत्र में बहुत सारे स्थान है, यहाँ पे जंगलों में सतपुड़ा वन बहुत अच्छा है, वहाँ पे जंगल सफारी भी शुरू हुई है, नदियां हैं, पहाड़ी नदियों पे बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं, सतधारा है ना, चिंगरिया है, आपका तामिया में एक बहुत अच्छा छोटा महादेव का पहाड़ है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्राकृतिक स्थल है, पातालकोट में बहुत एक अम्बा माई मंदिर है, दूधी नदी उद्गम स्थल है, गायनी नदी है, राजा खो है, पातालकोट के सुंदर सुंदर गांव हैं, बहुत अच्छे अच्छे दर्शनीय व्यू पॉइंट है, चिमटीपुर है, रातेड़ है, ये बहुत सारे स्थान है यहाँ पे जहाँ पे पर्यटकों के लिए अनलिमिटेड प्राकृतिक दर्शन देखने को मिलता है।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ष की विदाई और नव वर्ष के आगमन के अवसर पर इस बदलते मौसम में जब सैलानी वहाँ पर आते हैं तो वो अपने आप में कैसा महसूस करते हैं?
सर एक चीज तो है कि अगर हम बात करें नए सैलानियों के बारे में जो पहली बार या अभी अभी आना शुरू किए हैं तो उन्हें बहुत आत्मिक अनुभूति अच्छी होती है, प्रकृति की छटा देख के सतपुड़ा का ये वाला क्षेत्र बहुत ही सुंदर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत सालों से तामिया आ रहे हैं उन्हें निराशा भी होती है क्योंकि इन दिनों ठंड के दिनों में जो तामिया का मौसम हुआ करता था बहुत ही सर्द हुआ करता था, जहां तहां अलाव जला के आसपास के वातावरण को गर्म किया जाता था, लोग आने जाने वाले बैठ के वहां अपना समय वो करते थे, लेकिन आज दिन में गर्मी लगती है और रात में ठंडी लगती है, तो उन लोगों को निराशा भी होती है कि ये वो वाला जो जंगल था या वो वाला ये जो क्षेत्र था धीरे धीरे विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी पिछड़ते जा रहा है और इसमें नुकसान ही हुआ है।
यानी मौसम परिवर्तन का असर तामिया क्षेत्र में भी पड़ रहा है?
बिल्कुल, जो खेत थे वो धीरे धीरे कॉलोनियों में बढ़ते जा रहे हैं, जो जंगल थे वो खेत में बसते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अंतिम रूप में देखा जाएगा तो पेड़ों की कटाई ही सबसे ज्यादा हुई है हर क्षेत्र में विकास के कारण, तो निश्चित तौर पे जंगल कम हुए हैं, फिर भी बहुत जंगल है लेकिन अभी इसके संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।
सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले कोरोना काल में हमने देखा है कि आयुर्वेदिक औषधियों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है, चाहे गिलोय, तुलसी
जी,
और इसकी मात्रा अपने छिंदवाड़ा जिला में बहुत अधिक है और
जी,
अभी और कोरोना की समस्या दिख रही है
जी,
तो आप जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहूंगे इस बदलते मौसम में कि वे कौन सी जड़ी बूटियों का विशेषकर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप उस क्षेत्र से हो तो जड़ी बूटियों से संबंधित आपको बहुत सी जानकारी है।
जड़ी बूटियों से संबंधित जानकारियों का मुझे थोड़ा कम ही ज्ञान है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे शरीर को हमारा हस्त पुष्ट रख सकती है जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों का बारे में यहाँ पे अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मैं ही चाहूंगा कि नियमित खान पान में आप गिलोय है ना, आपका अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, हमारे यहाँ काफी मात्रा में यहाँ मिलती है। आप उनका निश्चित तौर पे समय समय पे उपयोग करते रहें, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखें, तो निश्चित तौर पे अगर कोरोना जैसी फिर से की महामारी अगर अपने पैर पसारती है तो हमारे शरीर को कम ही इफेक्ट करेगी। निश्चित तौर पे हमारा उसमें कहीं ना कहीं हमारा शरीर उनकी इफेक्ट से झेलने की कुछ क्षमता विकसित कर पाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने छिंदवाड़ा मोबाइलवाणी के मंच पर उपस्थित होकर बदलते मौसम के ऊपर अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की। छिंदवाड़ा मोबाइलवाणी से दिनकर पासुकर,
नमस्कार, धन्यवाद, आपका नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को।
आपको भी सर।
जी।